SBS हिंदी।
डॉक्टर शर्मा, ये बताइए कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत 2018 में भी दुनिया की सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी होगी, तो इस बारे में हमें थोड़ा सा बताएं।
जी बिल्कुल, जो भारत का जो ग्रोथ रेट है वो उसके अनुमान काफ़ी अच्छे हैं, जो जो कि 7.6 के रेट पे देखा गया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 7.6% पे ग्रो करेगी 2018-19 में, जो एक बहुत बढ़िया अनुमान है। और ये भी कहा गया है कि जो ये ग्रोथ का अनुमान है वो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुई हैं पीछे कुछ अर्से में, उसी का नतीजा है कि भारत एक अच्छी ग्रोथ दिखा पाएगा, क्योंकि जो पीछे रिफॉर्म्स हुई हैं वो कह लीजिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, या फिर जो भी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और बहुत सारी जो रिफॉर्म्स हुई हैं उन्हीं का परिणाम है कि भारत का जो ग्रोथ रेट है वो अच्छा अनुमानित है। और आने वाले वर्ष में भी जो उसके आगे भी जो अनुमान है वो बहुत अच्छे हैं। पूरे विश्व की जो ग्रोथ है उसको भी आगे बढ़ा के दिखाया गया है कि जो 3.2 का अनुमान दिया गया है कि हमारा जो पूरा जो वैश्विक इकोनॉमी है वो इस रेट से ग्रो करेगा। तो कुल मिला के जो पूरी दुनिया की ग्रोथ के संकेत हैं वो बहुत अच्छे हैं। डेवलप्ड इकोनॉमीज में भी काफ़ी अच्छे ग्रोथ संकेत आए हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज भी सपोर्ट कर रही हैं, और खासकर जो उसमें जो चैलेंज बताए गए हैं कि ग्रोथ को क्या क्या चैलेंज हो सकते हैं, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो ये प्रोटेक्शनिज्म का पॉलिसी जो कुछ इकोनॉमीज अख्तियार कर रही है, जिसमें कि जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं जैसे यूएसए एंड चाइना, कुछ ऐसी ट्रेड वॉर की जो संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि यूएस ने काफ़ी सैंक्शन लगा दिए हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि वो अगर इम्पोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर जो ड्यूटी है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, और लगभग फ्लेवर को 1000 ऐसे आइटम्स हैं जिनके ऊपर वो 25% से ज़्यादा ड्यूटी थोपना चाहते हैं। तो इससे क्या है कि जो ट्रेड है वो इम्पैक्ट हो सकता है, जो उस पर ग्रोथ को भी इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन इस वक्त पे यही आशा है कि इनमें जो ये ऐसी संभावनाएं हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगी और कुछ ना कुछ इसका समाधान होगा और जो ग्लोबल ग्रोथ है वो अपने एक इंटैक्ट ट्रैजेक्टरी में ग्रो करेगी।
जी शर्मा जी, अगर भारत की विकास दर की अगर बात करें खास तौर से, तो उसके संबंध में वो कौन से मानदंड है जिनके दम पर संयुक्त राष्ट्र ने ये अनुमान किया है, और उसके आगे फिर चैलेंजेस की भी बात करेंगे।
देखिए, जो भारत का की ग्रोथ का अनुमान है जो 7.6% का है, उसके सबसे पीछे जो बड़ा कारण है वो ये है कि हमारा एक कंजम्पशन लेड ग्रोथ है, हमारा जो अपना डिमांड है वो इंटैक्ट है, और उसी ग्रोथ की वजह से, उसी डिमांड की वजह से हमारा जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इस वर्ष में जब ग्लोबल ग्रोथ भी अच्छे तरीके से अनुमानित है, तो भारत का ग्रोथ भी उसके साथ साथ और ज़्यादा तेज गति से बढ़ेगा। तो जो ग्रोथ के पीछे जो कारण है वो हमारे डोमेस्टिक है, विद इन इंडिया है, एक तो पॉलिसी रिफॉर्म्स है, और दूसरा जो हमारा कंजम्पशन लेड ग्रोथ है वो इसके लिए काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन साथ ही ये चैलेंज भी है, क्योंकि एक तो जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, और जिसका सीधा इम्पैक्ट जो है इन्फ्लेशन के ऊपर आता है, और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वो ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि फिर ब्याज की दर भी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरा, अगर ग्लोबल ग्रोथ को अगर चैलेंज होता है, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोटेक्शनिज्म की तरफ से देख लीजिए, या फिर जो जियो पोलिटिकल टेंशन है उनकी तरफ से देख लीजिए, तो फिर ग्लोबल ग्रोथ अगर इम्पैक्ट होता है तो उसका असर जो है फिर दूसरे डेवलपिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज के ऊपर भी आता है, जिनमें भारत भी एक है।
जी अच्छा, ये बताइए कि इस रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में भी भारत की विकास दर संभवतः काफ़ी अच्छी रहने वाली है, तो ये बताइए कि क्या कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसकी वजह से भी ये ग्रोथ प्रोपेल हो रही है या हो सकती है? आपने कंजम्पशन एक बताया, लेकिन क्या कुछ और भी इसके पीछे कारण है?
जी बिल्कुल, कंजम्पशन तो एक बेसिक स्ट्रेंथ है कि हमारा जो अपना डिमांड है वो इंटैक्ट है, और इसके अलावा जो हमारे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, जो दूसरे इकोनॉमीज के कंपैरिजन में बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। और तीसरा, जो रिफॉर्म्स इन्वायरमेंट है वो कंटिन्यूअस है। एक तो रिफॉर्म्स जब आगे की आगे बढ़ती हैं तो उससे जो सीधा असर है, जो उसका बिजनेस सेंटिमेंट के ऊपर बहुत अच्छा पॉजिटिव असर होता है, क्योंकि खासकर जो है वो माइक्रो लेवल से शुरू होती है। अगर कंपनीज ग्रो करती है तभी जाके वो मैक्रो लेवल पे जीडीपी में दिखाई देता है। तो जब कंपनीज का माइक्रो लेवल पे जो रिफॉर्म्स हो रही है, जो सरकार का रेगुलेटरी एनवायरमेंट कहिए या फिर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहिए या फिर जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस है उसमें कहें, तो कुल मिला के जो रिफॉर्म्स हैं वो कंटिन्यूअस हैं। और जीएसटी एक ऐसी रिफॉर्म हुई है जिसका कि आने वाले टाइम में सीधा 2 परसेंटेज पॉइंट का जो असर है वो दिखाई देगा। तो जैसे आपने बताया कि आने वाले टाइम में भी हमारी जो ग्रोथ है वो इंटैक्ट रहेगी और इसके हायर रेट पे ही रहेगी, और भारत सरकार का तो अनुमान है कि हम करीबन कोई 8% के आसपास बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये सब चीजें जो मैक्रो लेवल पे जो एक रिफॉर्म्स एनवायरमेंट है और जो हमारे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट्स हैं और खासकर जो अभी हमारा एक्सटर्नल इकोनॉमी है जो वो मजबूती की तरफ दिखाई दे रहा है, अगर हमारे एक्सपोर्ट्स जैसे अभी हम 9-10% के ग्रोथ के आसपास पहुंच गए हैं, तो आने वाले टाइम में अगर एक्सपोर्ट ग्रोथ और इंटैक्ट हो जाता है जिस तरीके से ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है, तो हमारी ग्रोथ को और बूस्टअप मिलेगा, जिससे कि जो हमारा ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है जो भी 7.6% पे अनुमानित है वो आने वाले टाइम में 8% के आसपास या इससे भी आगे निकल सकता है।
जी, एक आखिरी सवाल डॉक्टर शर्मा आपसे कि अनुमान तो लगाया है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में, अगर वास्तविक स्तर पर देखें तो क्या आपको लगता है कि ये लगभग सही अनुमान लगाया है संयुक्त राष्ट्र ने?
जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही अनुमान है, क्योंकि जो बाकी के अनुमान है ये उनसे कोई बहुत ज्यादा परे नहीं है। खासकर जो अनुमान है वो काफी, जैसे IMF के अनुमान है 7.3% पे है और जो हमारा अपना अनुमान है वो 7.7% पे है, जो भारत की अर्थव्यवस्था में जो है हमारा इकोनॉमिक सर्वे है, और जो दूसरे कुछ और जो रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अनुमान भी लगभग 7.3% से लेके 7.7-7.8% के आसपास हैं। तो ये अनुमान भी जो है एवरेज को लेकर अगर देखें तो उसी के आसपास है, तो अनुमान जो है बिल्कुल सही लग रहा है।
डॉक्टर शर्मा, हमें पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू पल्लवी।
आपके विचार हमें बताएं। SBS हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और @SBS हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें।